नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता के वीकेंड पॉडकास्ट में। कल होली है, आप भी रंगों में रंगने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होली को मनाने के पीछे की क्या मान्यताएं हैं। वसंत को सदा से नवजीवन का मौसम माना गया है। ये पतझड़ के बाद सर्जना की ऋतु है। इसके आगमन से ही बहुत कुछ बदल जाता है। सरसों के खेत पीले फूलों की चादर ओढ़ लेते हैं। ठूंठ हुए पेड़ वासंती ऊर्जा से पुनः छतरा जाते हैं। पूरी धरित्री विविध फूलों का श्रृंगार कर लेती है, तो आम्र मंजरियों की सुगंध से बौराए कोयल की कूक किसी हिय में प्रेमास्पाद के लिए हूक उठा देती है। वसंतोत्सव का रंगीला मौजीला मस्त मौला अनुष्ठान है होली। वसंत का पूर्ण परिपाक है होली। वस्तुतः फागुन आते ही चारों ओर स्त्री पुरुष पेड़ पौधों में एक नवीन स्पंदन, एक नूतन ऊर्जा का संचार दिखता है। ये फागुनाहट पूर्णिमा के दिन उमंग एवं उल्लास के साथ भाग गाकर एवं रंगों की बौछार के साथ होली मनाकर समाप्त होता है। भाषिक रूप से देखें तो होली शब्द होलिका से व्युत्पन्न हुआ है। होलिका के अर्थ की कई व्याख्याओं में एक के अनुसार ये विनाशिका शक्ति है। होलिका या विनाशिका शक्ति जब प्रह्लाद या विशिष्ट आह्लाद को अपने आगोश में लेती है तो उसे समाप्त नहीं कर सकती, अपितु स्वयं समाप्त हो जाती है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र भक्त प्रह्लाद को मारना चाहता था। उसकी बहन होलिका प्रह्लाद को लेकर अग्नि में प्रविष्ट हुई। होलिका जल गई, प्रह्लाद सुरक्षित रहे। ज्ञातव्य है कि प्रह्लाद आह्लाद की विशेष अवस्था है, जो ज्ञान की अग्नि में तपकर प्राप्त होती है। वस्तुतः होलिका का इस तरह होम हो जाना और प्रह्लाद का अक्षुण रह जाना होली का संदेश है। इस अर्थ में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है होली। मन के मैल को, कालुष्य को दूर कर सबका स्वागत करने एवं नव आरंभ करने का त्यौहार है होली। वेद और पुराण में होलिका शब्द का अर्थ इससे भिन्न अग्नि की रक्षिका शक्ति से है। पुराण में वर्णन मिलता है, इससे पता चलता है कि होम में संबंधित होने का कारण होलिका अस्तित्व में आया। कालांतर में इस होलिका से संबंध होने के कारण अग्नि में सेके गए चने, गेहूँ, यव आदि अन्नों का नाम भी होला हो गया। होलिका की एक अन्य व्याख्या भी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि चक्रवर्ती सम्राट रघु के शासनकाल में दुंढा नामक एक भयावह राक्षसी ने बालकों को पीड़ित कर दिया था। ऐसे में नारद जी ने भगवान से इस उपद्रव से परित्राण हेतु पूछा। भगवान ने कहा, ढूंढा नाश का एकमात्र उपाय होलिका नामक अग्नि ही है, इसमें होम करना आवश्यक है। इस व्याख्या के अनुसार ढूंढा राक्षसी के भय से बाल बंधुओं का परित्राण करने के लिए ही होलिका महोत्सव का आरंभ हुआ। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये ढूंढा धुंध का ही रूप है। ऐसे में मानना होगा कि अज्ञानता का धुंध ही ढूंढा राक्षस है। बालकों के अज्ञान को मिटाने वाला और उन्हें प्रह्लाद बनाने वाली अग्नि ही होलिका है। रंगोत्सव से एक दिन पूर्व जो होलिका दहन का विधान है, उससे मिलता जुलता एक वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। रक्षोग्र अग्नि देवता हैं, वही रक्षा भी करते हैं। जिन्हें आहुति प्रदान करने के लिए शुष्क काष्ठ, तृण आदि एकत्रित किए जाते हैं। ये होम वाली होलिका दहन की प्रक्रिया ही है और कुछ नहीं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आदिकाल से अधुनातन पर्यंत होली का त्यौहार भारतीय जनजीवन को उद्वेलित करता रहा है। कई संस्कृत ग्रंथों में रंग नामक उत्सव का वर्णन मिलता है, जिनमें हर्ष की प्रियदर्शिका एवं रत्नावली तथा कालिदास की कुमार संभवम तथा मालविका ग्रिमित्रम शामिल हैं। कालिदास रचित ऋतु संहार में पूरा एक सर्ग ही वसंतोत्सव को अर्पित है। मध्यकाल में चंद बरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में भी होली का वर्णन है। ध्यातव्य है कि अलग अलग प्रांतों में होली के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी प्रतिपादित करते अलग अलग वर्णन मिलते हैं। ब्रज में राधा और कृष्ण के होली खेलने का वर्णन अगर अति चर्चित है तो अवध में राम और सीता को होली खेलते वर्णित किया जाता है। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। इस तरह शैव संप्रदाय के क्षेत्रों में दिगंबर खेले मसाने में होली जैसे गीत से शिव द्वारा शमशान में होली खेलने का लोक वर्णन मिलता है। ये भी कम रोचक नहीं है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली एक गीत में होली का चटक रंग मौजूद है। आज रंग हैरी मन रंग है अपने महबूब के घर रंग हैरी। भारतीय शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोक तथा फिल्मी संगीत की परंपराओं में भी होली का विशेष महत्व है। शास्त्रीय संगीत में धमार का होली से गहरा संबंध है। चलो गोइयां आज खेलें होरी कन्हैया घर आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसी तरह ध्रुपद में एक चर्चित गीत है खेलत हरी संग सकल रंग भरी होरी सखी। सिलसिला के गीत रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे की अपार लोकप्रियता या नवरंग के आया होली का त्यौहार उड़े रंगों का बौछार की थिरकन इस बात का प्रमाण है कि होली भारतीय जनजीवन को कितना उद्वेलित और रोमांचित करता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो रंग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु रंज से हुई है जिसका अर्थ है लाल रंग या रंगे जाने योग्य। लाल चेहरे की लालिमा है आभा है सूर्य का रंग है तो वैराग्य का भी रंग है। मनोरंजन में ये रंज या रंग मन को रंगता है वहीं अनुरंजन में भक्ति के रंग में रंग जाने का बोध है। होली के अवसर पर प्रियतम या प्रियतमा के चेहरे को रंगीन मिजाज होकर रंगे या शरारत में किसी और के चेहरे को रंगे ये होगी रंगबाजी या रंगदारी ही। रंज कुल का ही शब्द है राग ये राग आया संस्कृत के राग से। देखिए कि राग अधिक तो रंग भी अधिक राग खत्म की विरागी बैरागी बीतरागी हुए हाँ तब भी एक रंग रहेगा जी हाँ लाल तब भी बचेगा। डूबते सूर्य का बैरागी रंग अग्नि का रंग परिपाक का रंग। होली की कोई भी चर्चा ब्रज के बिना अधूरी है। ब्रज भगवान श्री कृष्ण के राग रंग और रास की भूमि है आध्यात्मिकता के रसधार की भूमि है। भाषिक रूप से देखें तो रस से ही रास बना है जहाँ रस का प्राचुर्य है वहाँ रास है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रसों के समूह के रूप में रास का वर्णन है। कृष्ण के आकर्षण में जब गोपियाँ ब्रज में आती हैं तो रसधार बहती है जो रास है तो रास में रस की धारा बहती है। राधा क्या है ऐसे तो राध से राधा शब्द की व्युत्पत्ति है जिससे आराधना आदि शब्द बने हैं परंतु विचारणीय है कि राधा धारा का विलोम है विप्रय है। राधा धारा राधा जो धारा के विपरीत बहे वो राधा है। राधा अति विशिष्ट है उसका प्रेम विशिष्ट है। राधा कृष्ण के कर्षण में कर्षित होती है खींचती है लेकिन बांधना या मांगना नहीं जानती। राधा केवल कृष्ण की हुई जबकि कृष्ण सबके हुए। राधा के हृदय का विस्तार अपार है क्योंकि उसका प्रेम ससीम नहीं असीम है। वो कृष्ण को नहीं बांधती वो प्रेम को नहीं बांधती उसे मुक्त कर देती है। राधा की कोई मांग नहीं कोई बंधन नहीं इसीलिए विराट हो गई। प्रेम में विराट होने का प्रतिदिन देखिए कि प्रेमी 64 कलाओं से पूर्ण योगी राज कृष्ण हुए लेकिन राधा उनसे भी पहले स्मरण में आती हैं। राधे कृष्ण होली के संदर्भ में ही देखें तो राधा के कारण ही बरसाने वाली होली का अन्य होलियों से श्रेष्ठ स्थान है। फिलहाल ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।